اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا کہاں، تیرا کیا کام ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا کہاں، تیرا کیا کام ہے، کیا ہے تیری حقیقت جو گم نام ہے، تجھ پہ خود کو چھپانے کا الزام ہے، تونے دنیا بنائی کیوں، مقصد بتا، تونے دنیا بنائی کیوں، مقصد بتا، روحیں اس میں بسائی کیوں، مطلب جتا، روحیں اس میں بسائی کیوں، مطلب جتا، تیرے جلبوں سے روشن زمین آسمان، کیوں کسی کو نظر تو نہ آتا یہاں، تیری پردہ نشینی کا انجام ہے، ڈھونڈتا آج بھی تجھ کو انسان ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا مذہب میں ہے تیرے چرچے بیاں، شان میں تیری لکھتے ہیں پرچے وہاں، دھرم مذہب میں ہے تیرے چرچے بیاں، شان میں تیری لکھتے ہیں پرچے وہاں، سب کے بھگوان اپنے ہی اپنے جہاں، نہ سمجھ تجھ کو سمجھے نہ لڑتے یہاں، تو سمجھدار ہو کے بھی انجان ہے، ہے بدی کرتے انسان تو بدنام ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا کہاں، تیرا کیا کام ہے، جنت بنانے کی محنت بھی کی، پھر یہ دوزخ کو لانے کی زحمت کیوں کی، تو نے جنت بنانے کی محنت بھی کی، پھر یہ دوزخ کو لانے کی زحمت کیوں کی، کھیل کیسا گجب تھا گزب ڈھا دیا، نیکیوں کو بدی سے ملا جو دیا، لینا کب تک تمہیں سب کا امتحان ہے، اب سبھی کے دلوں میں یہ ارمان ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا کہاں، تیرا کیا کام ہے،
شانتی۔ جب بھی ہم یہاں بیٹھتے ہیں، پرماتما کی یاد میں بیٹھتے ہیں، راجیوگ کا ابھیاس کرتے ہیں، تو ضرور ہمارا من اس ایشور کے پاس پہنچ جاتا ہے جس کو ہم سبھی بہت پیار سے یاد کرتے ہیں، دل سے یاد کرتے ہیں، اور اس یاد کے دوارا ہمیں پراپتی کا انوبھو بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارا لکش ہے کہ ہم یہ جیون کا अनुभव बना दें, राजयोगी जीवन बनाएं। इस मन बुद्धि को जब हम सदा ही उस ईश्वर की याद में रख सकें तो ऑटोमेटिकली सारा दिन हमें परमात्मा से जो आत्मा के गुण हैं उसकी ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती जाएगी। कल हमने देखा था कि स्वयं की पहचान जो परमात्मा ही बैठकर हमें समझाते हैं कि शरीर को चलाने वाली हम एक बहुत सुंदर दिव्य शक्ति हैं, आध्यात्मिक शक्ति हैं, जिसका मूल स्वभाव क्या है। कल हमने देखा मूल स्वभाव हमारा क्या है, मूल गुण कौन से हैं, हमारे कोर वैल्यूज कहो, शक्तियां कहो, स्ट्रेंथ्स कहो कौन सी हैं, आत्मा के निज गुण कौन से हैं। आपने कल तो सुना था और वर्णन भी किया है आत्मा के मूल स्वभाव कौन सा है। 7 गुण हमने कल देखे थे, कौन से हैं। सारे दिन में कई लेक्चर्स में भी उसके बारे में बार बार आपको समझाया जाता है, रेफर किया जाता है। कौन सा गुण है, पहला आपने कहा शांत स्वरूप है आत्मा, और मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, और जी प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, भाई भी सुनाएंगे ना, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। तो ये आत्मा के निज गुण जो है, इन शक्तियों को रोज हमें रिचार्ज करना है। जैसे हम देखते हैं कि ये शरीर को भी रोज सुबह से रात तक हम सशक्त करते रहते हैं, रिचार्ज करते हैं। आज सुबह उठकर ही हमने क्या किया, स्नान आदि किया, इसको स्वच्छ किया। अब हम परमात्मा के रहस्य को जानेंगे, राजयोग की शिक्षा ले रहे हैं। जैसे ये सेशन समाप्त होगा तो हम क्या करने जाएंगे, क्या करेंगे, हम नाश्ता करने जाएंगे। उसके बाद फिर से हमारा सेशन होगा, फिर दोपहर तक सेशन चलेंगे, फिर दोपहर को क्या होगा, फिर से लंच ब्रेक होगा, आराम थोड़ा करेंगे, शाम को चाय लेंगे, फिर सेशंस होंगे, फिर रात्रि को हम भोजन करेंगे और विश्राम करेंगे। तो इस शरीर को सशक्त रखने के लिए हमारी डेली रूटीन में ही हमने भोजन, आराम, निंद्रा, इस शरीर को क्लीन करना, स्वच्छ करना, ये सबको इंटीग्रेट किया है, शामिल कर लिया है। हाँ, आत्मा को सशक्त रखने के लिए, आत्मा का रोज शुद्धिकरण करने के लिए हमने अपने डेली रूटीन में कितना समय इसको शामिल कर लिया है, इंटीग्रेट कर लिया है। तो हम देखते हैं कि ये डेली हमारे सारे दिन में हम मन बुद्धि को उस ईश्वर के साथ सहज जोड़ सकें, उसके लिए परमात्मा ही बैठकर अपना परिचय हम देते हैं। क्योंकि किसी को भी याद करने का पहला कदम है उसको संपूर्ण रूप से जानना। तो हम देखते हैं कि परमात्मा को हम जानते तो जरूर हैं, क्योंकि दिल से हम उनको याद करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, उनको पुकारते भी हैं। तो हम देखते हैं हर एक धर्म में हमने बहुत प्यार से उस ईश्वर पिता को याद किया है। विधि भल अलग होगी, नाम अलग होगा, लेकिन फिर भी हमने बहुत श्रद्धा से और बहुत दिल से, भावनाओं से, सम्मान से उसको याद किया है। और हर एक धर्म में परमात्मा की याद से कुछ समय के लिए प्राप्ति का अनुभव भी किया है। जब तक हम उस वायुमंडल में हैं, चाहे हम चर्च में बैठे हैं, गुरुद्वारे में बैठे हैं, मस्जिद में बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं, कोई भी आध्यात्मिक स्थान पर बैठे हैं, तो वहाँ के वायुमंडल से भी हमें शक्ति, शांति का सुख जो है मिलता है। लेकिन हम ये अनुभव हर पल कर सकें, सारा दिन ही मन बुद्धि से उनको याद कर सकें। जैसे यहाँ बैठे भी अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपने परिवार को याद करें तो कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, अपने माता पिता को, अपने जीवन साथी को, अपने बच्चों को, भाई बहन को याद कर सकते हैं? मेहनत है? आप कहेंगे नहीं नहीं, मुझे बैठकर थोड़ा इसके लिए अलग बैठना ज़रूरी है, शांति का स्थान चाहिए, ऐसा ज़रूरी है? नहीं, सुनते सुनते आपने सुना शब्द जीवन साथी, बच्चे, तो सुनते सुनते भी मन क्या हो गया, उनके पास पहुंच गया। हम बुद्धि से उनको देख भी रहे हैं, परिवार के सदस्य को बहुत प्यार से देख भी रहे हैं, तो हम देखते हैं कितना सहज हमारा योग जो है परमात्मा के सिवाय और देह के धारियों के साथ जुड़ जाता है, ऐसा ही सहज उस परमात्मा के साथ भी जुड़ जाए। तो उनका परिचय आज हम, जो परमात्मा ही आकर अपना परिचय देते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। परमात्मा को हम परमात्मा कहते हैं। ऐसे देखा जाए तो हम अनेक मनुष्य आत्माएं हैं इस समय सृष्टि पर, कितनी करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, 750 करोड़ से भी अधिक मनुष्य आत्माएं हैं। उनमें से कोई विशेष आत्माएं थी जिन्होंने धर्म के लिए बहुत विशेष योगदान दिया, विशेष कार्य किया, उनको हम धर्मात्माएं कहते हैं, धर्म स्थापक आत्माएं कहते हैं। तो धर्मात्माएं भी अनेक होकर गए। ऐसे भी विशेष आत्माएं थी जिन्होंने विशेष कार्य किया, श्रेष्ठ कार्य किया, उनको हम श्रेष्ठ आत्माएं कहते हैं, वो भी अनेक होकर गए। महान कार्य करने वाली महान आत्माएं भी अनेक हैं। कई हम देखते हैं कि बहुत विशेष योगदान के रूप में समाज में दान पुण्य करते हैं, ऐसे धर्मात्माएं भी अनेक हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट जिसको हम कहते हैं, दानी आत्माएं, वो भी अनेक हैं। मनुष्य आत्माएं अनेक हैं, देव आत्माएं अनेक हैं, 33 करोड़ से ज्यादा देव आत्माओं का गायन है। परमात्मा अनेक या एक, क्या कहेंगे? एक। तो ये बात हम देखते हैं, हर एक धर्म पिता ने भी हमें समझाया कि वो परमात्मा एक है, क्योंकि ये परम शब्द का अर्थ क्या है? परम का अर्थ है हाईएस्ट, सुप्रीम, सबसे ऊंचे से ऊंचा। इसलिए वो विशेष आत्मा जो हम सब आत्माओं में से परम है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ है, ऊंच से ऊंच है। तो किस विशेषताओं से परमात्मा हम सर्व आत्माओं से परम है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ है, आज उन बातों को हम देखेंगे। 5 ऐसी मुख्य बातें हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जिनमें परमात्मा विशेष है, उनका कार्य विशेष है, लेकिन फिर भी ये 5 बातों को हम देख लेते हैं, जिस आधार से हम परमात्मा को जान सकते हैं, उनके साथ एक बहुत समीप संबंध जोड़ सकते हैं, जहाँ वो नेचुरल रूप में परमात्मा के साथ एक अपनापन महसूस होता है, जिसके आधार से हम सारा दिन स्वाभाविक रूप में उसकी याद में रह सके। पहला परिचय, पहली बात है कि परमात्मा को सर्वोच्च कहा गया है, सर्वोच्च अर्थात ऊंचते ऊंच। गायन भी किया गया है, उनका नाम भी ऊंचा, उनका काम भी ऊंचा, उनका धाम भी ऊंचा। ऊंचा उसका नाम, ऊंचा उसका काम, ऊंचा उनका धाम। तो नाम ऊंचा अर्थात कोई विशेष कर्तव्य परमात्मा ने किया है, इसलिए जब भी उनकी महिमा हम करते हैं तो उनकी उपमा, उनका कंपैरिजन हम किससे करते हैं? सागर से करते हैं। हम कहते हैं कि परमात्मा शांति का सागर है। कोई व्यक्ति के पास भी धीरज, शांति का गुण है तो हम कहते हैं इनमें बहुत शांति है, कहते हैं इस व्यक्ति में बहुत शांति है, धीरज है। और ईश्वर को हम जब गायन उनका करते हैं तब कहते हैं वो शांति का सागर है। सागर हमने क्यों कहा ईश्वर को? सागर की उपमा क्यों दी? सागर की विशेषता क्या है? बेहद है, ऊंचते ऊंच है और बेहद है, अनलिमिटेड है, बेअंत है। तो इसलिए हम देखते हैं कि परमात्मा हर गुण और शक्ति का सागर है, शांति का सागर है, प्यार का सागर है, पवित्रता का सागर है, सुख का सागर है, ज्ञान का सागर है, अर्थात हर गुण में वो बेअंत है, वो बेहद है, स्रोत है, जो गुण और शक्ति हम जितना भी उनसे प्राप्त करना चाहें प्राप्त कर सकते हैं। तो उनकी महिमा में हम देखते हैं वह ऊंचते ऊंच है, लेकिन यहाँ परमात्मा की महिमा कर्तव्य सहित है, उनका नाम कर्तव्य सहित है। हम देखते हैं कि इस दुनिया में कई बार कोई का नाम तो बहुत श्रेष्ठ होता है, लेकिन कई बार कर्तव्य उतना श्रेष्ठ नहीं होता है। जैसे कि इनका नाम तो शांति बहन जरूर होता है, लेकिन उनके स्वभाव में थोड़ा गुस्सा ज़्यादा होता है, वो छोटी छोटी बातों में कभी कभी उत्तेजित हो जाते हैं। तो नाम और कर्तव्य में अंतर है। किसी का नाम तो हम देखते हैं लक्ष्मी नारायण भी हो सकता है, लेकिन शायद उनके जीवन में उनको धन की बहुत कमी है, कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस है। तो नाम और कर्तव्य में अंतर है। परमात्मा का जैसा नाम वैसा ही ऊंचते ऊंच कार्य कर्तव्य। तो हम सबका ईश्वर से बहुत समीप संबंध है, हम उनको प्यार से याद करते हैं। तो हमारे लिए ईश्वर का वो सबसे समीप सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य कौन सा है जिसके आधार से हम उनको बहुत प्यार से याद करते हैं, उनसे समीपता का अनुभव करते हैं। उनका कौन सा कर्तव्य हमारे लिए पर्सनल लेवल पर महत्वपूर्ण है? कौन सा कर्तव्य जी? सुखदाता है। अच्छा, संभालने वाला है, पालनहार है, और दया देने वाला, दया करता है, दया भाव हम पर रखने वाला, क्षमा का सागर है। आत्मज्ञान देने वाला, ज्ञान का दाता है। तो हम देखते हैं ये बहुत सारे कर्तव्य है, और उनके मन में भी बहुत सारे कर्तव्य आते हैं। तो मुख्य कर्तव्य में हम देखते हैं दुख हरता सुख करता है। इसलिए हम जीवन में और परिस्थितियों में याद करें ना करें, दुख में तो जरूर याद करते हैं, करते हैं ना। जैसे कोई परीक्षा का समय आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, दुख का समय आता है, तो दिल से उनके प्रति ये भाव आता है कि ईश्वर अभी हमें मदद करें, सहयोग दें, साथ दें। तो दुख हरता सुख करता है। परमात्मा को हम पतित पावन भी कहते हैं, आत्मा का शुद्धिकरण करने वाला। जैसे आजकल हम देखते हैं कि हेल्थ ट्रीटमेंट्स में हम एलोपैथी के साथ साथ कई और सपोर्ट ट्रीटमेंट्स करते हैं, नेचुरोपैथी करते हैं, शरीर को की जो क्लेंजिंग है उसके लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, करते हैं जो शरीर में टॉक्सिन आदि है उसको निकल जाए, उसके लिए नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट करते हैं। नेचर के और क्लिनिक में जाते हैं जहाँ शरीर को भी और स्वस्थ हम रख सकें। तो उसी रूप से आत्मा की नेचर को क्योर करने वाला, परिवर्तन करने वाला, आत्मा का शुद्धिकरण। आत्मा के अंदर भी टॉक्सिन है ना, है ना, कई ऐसे टॉक्सिन्स है ना, थोड़ा थोड़ा क्रोध है, आवेश है, थोड़ा अहम भाव है, ईर्ष्या का भाव है, जिसको हम पांच विकार कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनका छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा स्वरूप तो है। तो ये जो टॉक्सिन्स हैं इसको क्लेंस करने वाला, इसका शुद्धिकरण करने वाला परमपिता परमात्मा, इसलिए उसको हमने पतित पावन कहा गया है, आत्मा को शुद्ध बनाने वाला, प्योरिफाई करने वाला। तो हम देखते हैं कि परमात्मा के बहुत सारे श्रेष्ठ कर्तव्य हैं, और हर एक कर्तव्य द्वारा परमात्मा हमारी पालना करता है, हमारी संभाल करता है। और तीसरा हम देखते हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनका धाम भी ऊंच है, सर्व गुणों का शक्तियों का स्रोत है, सागर है, वह कर्तव्य भी ऊंचते ऊंच है और धाम भी ऊंचा है। तो सभी धर्मों में धाम में एक मत है। हम देखते हैं हमारे क्रिश्चियन भाई बहन भी कहते हैं ओ गॉड फादर अबव, गॉड फादर को आप याद करो जो ऊपर में निवास करता है। हमारे मुस्लिम भाई बहन भी जब नमाज पढ़ते हैं तो बुद्धि से ऊपर में दिशा देते हैं, बुद्धि को भी ऊपर, आंखें भी ऊपर चली जाती है कि वो अल्लाह को याद करो, नूरे इलाही को याद करो। हम देखते हैं हिंदू धर्म में भी कहते हैं ऊपर वाला जाने। साइंस भी जो भी शोध कर रही है, रिसर्च कर रही है, जो भी एक्सप्लोर कर रही है वो कहाँ एक्सप्लोर कर रही है? ऊपर में, इस धरती के अंदर में क्या है? धरती के अंदर क्या है? एज आप तो टीचर्स हैं, आप जानते हैं जो भी हम पढ़ाई पढ़ते हैं उसमें धरती के अंदर तो मिनरल्स है, जो भी धातु आदि है वो लावा है, जो भी एग्जिस्टेंस सृष्टि की है वो इससे परे है, इससे बियॉन्ड है। तो फिजिक्स में इस साइंटिस्ट ने बहुत सुंदर ये अलग अलग वर्ल्ड्स का, जिसको हम त्रिलोक कहते हैं, उसका वर्णन किया हुआ है। परमात्मा को भी त्रिलोकी नाथ कहा गया है, जो हमें ये तीनों लोकों का ज्ञान देता है। तो फिजिक्स में कहा गया है कि ये तीनों लोक को उन्होंने साइंस के आधार से, स्पीड ऑफ लाइट के आधार से उसका वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि एक ऐसी दुनिया है जहाँ हर एक चीज लाइट के स्पीड के नीचे चलती है, जिसको अंडर ल्यूमिनस वर्ल्ड कहते हैं, साकार दुनिया, साकार लोक कहते हैं। एक ऐसी दुनिया है जहाँ हर एक चीज लाइट की स्पीड के समान चलती है, जिसको उन्होंने ल्यूमिनस वर्ल्ड कहा है, जो हम आध्यात्मिक भाषा में सूक्ष्म वतन कहते हैं, फरिश्तों की दुनिया कहते हैं, एंजेलिक वर्ल्ड कहते हैं। और एक ऐसी दुनिया है जहाँ हर एक चीज लाइट की स्पीड के बियॉन्ड चलती है, सुपर ल्यूमिनस वर्ल्ड, जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में परम धाम कहते हैं, ब्रह्म तत्व कहते हैं, शांति धाम कहते हैं। तो जब हर एक चीज लाइट के स्पीड के बियॉन्ड चलती है, तो वहाँ आवाज भी नहीं हो सकता है, मूवमेंट भी नहीं हो सकता है, समय भी नहीं हो सकता है। समय को भी कैसे मेजर करते हैं? लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। तो इसलिए वो ऐसी सृष्टि है, वो ऐसी दुनिया है जिसको हम कहते हैं आवाज की दुनिया से परे, शांति की दुनिया, सुपर ल्यूमिनस वर्ल्ड, जो साइंस के आधार से समझते हैं, जहाँ परमात्मा निवास करते हैं। आत्मा भी देखो तो सुपर ल्यूमिनस बीइंग है, अर्थात आत्मा भी आवाज से परे, आत्मा भी हर प्रकार के प्रभाव से परे है, समय से भी परे है, समय के बंधन से भी परे है, मूवमेंट के बंधन से भी परे है। जैसे यहाँ बैठकर आप बचपन की कोई बात याद कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कोई ऐसा प्रसंग, कोई ऐसा अनुभव जो आपको बहुत स्पष्ट याद हो बचपन का, है ऐसा? है ऐसा? हर एक के पास कुछ ऐसी मेमोरीज हैं। तो हम मन से बचपन में पहुंच गए, पहुंच गए, पहुंच गए। हाँ, तन पहुंच सकता है, तन वापस जा सकता है समय में, प्रकृति नहीं, ये तन नहीं जा सकता, आत्मा जा सकती है मन के द्वारा, मन उसकी फैकल्टी है ना, कल हमने देखा। तो आत्मा को समय का बंधन नहीं है, बियॉन्ड टाइम है, सुपर ल्यूमिनस बीइंग है। इसलिए आत्मा के रहने का स्थान, परमात्मा के रहने का स्थान परम धाम, शांति धाम। अब जब हम मेडिटेशन करते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं, तो मन बुद्धि से वहाँ पहुँचते हैं। जैसे आपके स्कूल में, आपके यूनिवर्सिटी में कोई खास मेहमान आते हैं, जिनके साथ आपका बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, आपने उनको निमंत्रण दिया है और कोई विशेष कार्य के लिए आप उनसे मिलना चाहते हैं, तो आप कहाँ मिलेंगे उनसे? कहाँ मिलेंगे? आपके स्कूल में कोई मीटिंग रूम होगा, कॉन्फ्रेंस रूम होगा, वहाँ मिलेंगे ना, वहाँ मिलेंगे ना। हाँ, जहाँ प्लेग्राउंड है, जहाँ नीचे का रिसेप्शन एरिया है, वहाँ तो नहीं मिलेंगे। क्यों? वहाँ क्यों नहीं मिलेंगे? प्लेग्राउंड तो बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ बहुत आवाज़ होगा, डिस्टर्बेंस होगा, आना जाना होगा। इसलिए आप कॉन्फ्रेंस रूम अगर बना है या मीटिंग रूम बना है, वहाँ बैठकर मिलेंगे। तो ईश्वर के साथ भी जब हम मन बुद्धि से मिलन मनाते हैं, तो परमात्मा का मीटिंग रूम कहाँ है? परम धाम, आवाज़ की दुनिया से परे। तो हम राजयोग के अभ्यास में मन से वहाँ पहुँचते हैं। जैसे यहाँ बैठे भी, जब भी मैं आपको आपके स्कूल के बारे में कहती हूँ, स्कूल, यूनिवर्सिटी, तो मन से वहाँ पहुँच जाते हैं, पहुँचते हैं ना, देख सकते हैं ना, घर को भी देख सकते हैं ना। ऐसे यहाँ बैठे हुए मन बुद्धि से हम उस परम धाम में पहुँचकर परमात्मा से वो सुंदर मिलन का अनुभव करते हैं। अब परमात्मा के लिए हमने जो देखा, कि हमने कुछ बातें देखी कि वह सर्वोच्च है, दूसरा हम देखते हैं कि वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, क्योंकि रचयिता है। तो रचयिता के पास रचना की पूरी नॉलेज है ना। तो हम देखते हैं जैसे आप जो भी अपना स्टैंडर्ड पढ़ाते हैं, तो वहाँ जिस रूप से आप पढ़ाते हैं, जो सब्जेक्ट आप कवर करते हैं, आपने वो पूरा अगर इनिशिएट करके आपने वो स्टडी क्रिएट किया है, सपोज आप पहले से ही उस स्कूल में शुरू से ही वहाँ पढ़ा रहे हैं, उस स्कूल की शुरुआत से ही पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो स्कूल के बारे में जो भी प्रश्न है, किसी को जानकारी चाहिए, तो कौन देंगे? आप, क्योंकि आप शुरू से हैं, आप एक फाउंडर के रूप में वहाँ हैं। कोई सब्जेक्ट जो पढ़ा रहे हैं आप, तो वो टीचर के रूप में जब आप पढ़ा रहे हैं, किसी को भी कुछ पूछना है तो आपसे पूछेंगे। अगर बच्चों के बारे में आपको कुछ पूछना है तो किसको आप बुलाएंगे स्कूल में? पेरेंट्स को बुलाएंगे। पीटीए होता है ना, पेरेंट टीचर्स मीट होता है, पीटीएम। आप नेबर को नहीं बुलाएंगे, बच्चे के नेबर्स जो हैं, नहीं, उनके अंकल आंटी को नहीं बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे के बारे में पूरी जानकारी किसके पास है? माता पिता, वो रचयिता है। ऐसे परमात्मा भी रचयिता है, इसलिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का रहस्य वो हमको बैठकर बताता है। रचयिता ही आकर अपना और रचना का परिचय देता है, इसलिए हमने उनको सर्वज्ञ कहा कि सब कुछ जानने वाला और बैठकर हमको ये पढ़ाई पढ़ाता है, इसलिए उनको परम शिक्षक भी कहा गया है। तीसरा हम देखते हैं कि परमात्मा सर्व प्रभावों से परे हैं, सर्वपरि, सर्व प्रकार के बंधन हैं, प्रभाव है, उनसे परे हैं। इसलिए गीता में भी शब्द लिखे गए हैं कि मैं अजन्मा हूँ, अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ। अब फिर से हम साइंस की एक बात को बुद्धि में ध्यान में ले आते हैं। साइंस में फिर से एक कॉन्सेप्ट है, एक प्रिंसिपल है, नेगेंट्रोपी, लॉ ऑफ एंट्रोपी, जिसमें फिजिक्स में कहा जाता है कि कोई भी सिस्टम जो है जिसमें 100% ऊर्जा निर्माण हो चुकी है, 100% वो सिस्टम अभी कार्य क्षमता से भरपूर है, तो वो सिस्टम को जब आप प्रयोग करते हैं, अब इस समय 100% ऊर्जा है, लेकिन जैसे उसको प्रयोग करो सिस्टम को, क्या हो जाता है? धीरे धीरे कार्य में आते आते उसकी ऊर्जा कम होती जाती है, और जब ये ऊर्जा जीरो से नजदीक आती है तो क्या होता है? फिर हमें क्या विचार आता है, हमें क्या संकेत आता है कि अब फिर से इस सिस्टम को क्या करना है? फिर से सशक्त करना है, फिर से इसको रिजुविनेट करना है। लॉ ऑफ नेगेंट्रोपी, फिर से इसको सशक्त करने के लिए लॉ ऑफ नेगेंट्रोपी कहता है कि इस सिस्टम को एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट करना होगा। ऐसा है ना, जैसे हमारा मोबाइल है, जैसे ही डिस्चार्ज होता है, 15% रहता है, तो क्या आता है मैसेज? आपको आता है ना मैसेज, इसको कनेक्ट करें चार्जर से। आत्मा की ऊर्जा भी डिस्चार्ज हो रही है, मैसेज आता है, मैसेज आता है, हम उस मैसेज का ध्यान रखते हैं। मैसेज कौन सा आता है? छोटी छोटी बातों में हम अपसेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कोई बहुत छोटी बातों में भी हम मन से दुखी हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। दिन की शुरुआत है, हम रिफ्रेश होकर हमने दिन की शुरुआत की है, कोई बात आपस में मतभेद की हो जाती है, हम मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में बहुत थकान महसूस करते हैं, हमें लगता है अभी आगे आज दिन काम करना नहीं है, हम छोटी छोटी बातों में मतभेद में आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि आत्मा की भी ऊर्जा जो है डिस्चार्ज हो गई है, तो आत्मा की ऊर्जा को अगर रिचार्ज करना है तो किसके साथ कनेक्ट करना होगा? सुप्रीम चार्जर कौन है, सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा का रोल क्या है? वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसलिए वो ये साइकिल में नहीं आता है। अगर वो भी ये साइकिल में आए तो आत्माओं को फिर से रिचार्ज कौन करे? इसलिए परमात्मा ने कहा कि मैं ये जन्म मरण के चक्र से न्यारा हूं। इसलिए परमात्मा ने मनुष्य समान जन्म और मरण, कर्म और फल, अब कर्म अगर श्रेष्ठ कर्म है तो सुख का अनुभव है, अगर हमारा कर्म विकर्म है तो दुख का अनुभव है, तो कर्म और फल सुख और दुख इस साइकिल से, इस चक्र से परमात्मा न्यारा है। इसलिए परमात्मा के लिए कहा गया है कि वह अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता है। उनका कर्तव्य ही न्यारा है, इसलिए उनका जन्म अलौकिक है, जिसके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे। लेकिन हमने देखा कि वो सर्वोपरि है, सर्व बंधनों से परे। अब जो अगर हम कोई स्थान पर देखते हैं, कहाँ कोई नदी है, कोई डूब रहा है, तो वो जो डूब रहा है व्यक्ति, नदी या और कोई स्थान में व्यक्ति डूब रहा है, तो उसको बचाने वाला कौन होगा? जो किनारे पर है, जो स्वयं इन कर्म बंधनों में फंसा हुआ है, तो वो कैसे इससे न्यारा बना सकता है, वो कैसे मुक्ति दे सकता है? तो हम ईश्वर को याद करते हैं कि हमें मुक्ति दो कर्म बंधनों से। तो परमात्मा इन कर्म बंधनों से न्यारा है, इसलिए सर्वोपरि है। चौथी बात, सर्व गुण और शक्तियों का स्रोत है। जो गुण और शक्ति हमें आवश्यक है आत्मा को प्राप्ति का अनुभव करना है, परमात्मा स्रोत है। जैसे अगर हम देखें, जब गर्मी होती है तो हम तुरंत पंखा चला देते हैं, कहाँ कहाँ तो बहुत गर्मी होती है, एसी रखना पड़ता है, नहीं तो एसी चलाते ही क्या होता है, कुछ समय के लिए वहाँ का वातावरण ठंडा हो जाता है। बाहर में गर्मी है लेकिन वो कमरे का, उस हॉल का वातावरण ठंडा हो जाता है, कैसे? उस एसी की मदद से। ऐसे ही हम देखते हैं कि जब हमारा मन परेशान हो जाता है, कोई बात हमें डिस्टर्ब कर रही है, अंदर से बहुत आवेश आ रहा है, बहुत अंदर से हमारा मन उत्तेजित हो रहा है, लेकिन हम समझते कि हमें गुस्सा नहीं करना है, तो उस समय ईश्वर को याद करते हैं मन को शांत करने के लिए। उस समय एसी ऑन करेंगे तो मन शांत होगा? होगा नहीं। शरीर से हम थोड़ा ठंडक अनुभव करेंगे, लेकिन मन शांत करने के लिए किसको याद करते हैं? शांति के सागर को याद करते हैं। तो आत्मा के लिए हर गुण और शक्ति का स्रोत परमात्मा है, इटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और सबसे मुख्य बात पांचवा है कि वो सर्वमान्य है। इस सारे विश्व की हर एक आत्मा का वो माता पिता है, तो सारे विश्व की आत्मा का वो पिता है, इसलिए हर एक धर्म पिता ने हमें उनके तरफ इशारा दिया है, हर एक धर्म पिता ने उनका परिचय हमें गुप्त रूप में भी दिया है, कोई ना कोई ऐसे बात का वर्णन किया है जिससे हम उस सर्वमान्य पिता को याद कर सकें। तो उनके परिचय में कोई ना कोई ऐसी विशेषता है जो एक मत है। आज चलिए हम अनेक धर्मों का अवलोकन करें। तो क्राइस्ट ने कहा क्रिश्चियन धर्म में, गॉड इज लाइट, गॉड इज लव, लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ। ईश्वर हमें प्यार सिखाता है कि आप हर एक को प्यार करें, जैसे स्वयं को प्यार करते हैं वैसे उन्हें प्यार करें। परमात्मा के लिए उन्होंने कहा कि वो स्नेह की ज्योति है। जब उनको क्रॉस पर चढ़ाया गया तो क्राइस्ट ने क्या कहा? ओ गॉड फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। हे ईश्वर, हे परमात्मा, इन्हें माफ करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने आप को क्या कहा? मैं कौन हूं? मैं ईश्वर का बच्चा हूं। आई एम द सन ऑफ गॉड, आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड। उन्होंने हमेशा अपने आप को ईश्वर के बच्चे के रूप में, एक संदेशकर्ता के रूप में, संदेशवाहक के रूप में, मैसेंजर के रूप में वर्णन किया। तो उन्होंने भी उस लाइट के तरफ, उस सुप्रीम डिवाइन लाइट के तरफ हमें इशारा किया है। हम देखते हैं कि सिख धर्म ने भी, गुरु नानक जी ने कहा, क्या कहा? एक ओंकार निराकार निर्वैर सत श्री अकाल। उस सतगुरु को याद करो जो निर्वैर है, निराकार है, जिनका किसी के साथ वैर नहीं है, जो सदा हर आत्मा का पिता निराकार है। निराकार अर्थात जिसका शरीर रूपी आकार नहीं है। जैसे यहाँ ये हॉल है, मैं आपको कहूँ कि ये डायमंड हॉल जो है वो बहुत बड़ा है, तो आप कहेंगे कि नहीं, इससे भी बड़े कोई हॉल हो सकते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें, इससे भी बड़ा हॉल हो सकता है, तो मैं इसको कंपेयर कर रही हूँ कॉन्फ्रेंस हॉल से, तब ये डायमंड हॉल मुझे बड़ा लग रहा है। तो बड़ा छोटा ये अंतर के शब्द हैं। तो इसी रूप से अगर हम देखें निराकार और साकार, साकार अर्थात देहधारी शरीरधारी और निराकार अर्थात शरीर से न्यारी आत्मा। तो परमात्मा जो है वो निराकार परमात्मा पिता है, आत्मा का पिता है, निराकार है। इसलिए हम देखते हैं कि गुरु नानक जी ने भी उस रूप से उनकी महिमा की है। सतगुरु सत श्री अकाल, जो अकाल मूरत है, मनुष्य से देवता की एक करत न लागी वार, जो ऐसी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं जो मनुष्य से देवता बनाते हैं। कितनी ऊंची पढ़ाई होगी, कितनी सुंदर यूनिवर्सिटी परमात्मा ने खोला है, जो एम ऑब्जेक्ट है कि मनुष्य की कॉन्शियसनेस से डिवाइन कॉन्शियसनेस तक ले जाएं, मनुष्य को ऐसा श्रेष्ठ जीवन जीना सिखाएं जो उनका जीवन देवता समान हो। जैसे आज भी कोई अच्छा कर्म करते हैं तो हम कहते हैं ना, ये तो देवता जैसा है, कहते हैं ये तो देवता जैसा है। तो परमात्मा ऐसी श्रेष्ठ शिक्षा सिखा रहे हैं, ऐसी सुंदर ये शिक्षाएं दे रहे हैं जिससे हम मनुष्य से देवता बने। तो गुरु नानक जी ने भी उनकी वह महिमा की है। फिर इस्लाम में भी हम देखते हैं कि नूरे इलाही का गायन है, तो वहां भी निराकार स्वरूप में ही याद किया जाता है। नूर अर्थात, नूर का अर्थ है लाइट, रोशनी। तो वहां भी हम देखते हैं कि उस रोशनी को याद किया गया है। हम देखते हैं यहूदी धर्म है, जूस धर्म है, तो वहां भी मोसेस धर्म गुरु है, जिनको साक्षात्कार भी रोशनी का हुआ, बर्निंग बुश प्रकाश का हुआ, और उस प्रकाश के साक्षात्कार से, उस ईश्वर की प्रकाश के साक्षात्कार से उनको शक्ति मिली, जिससे उन्होंने वो 10 कमांडमेंट्स लिखे हैं, जो 10 उन्होंने मूल सिद्धांत लिखे हैं। तो हम देखते हैं वहां भी रोशनी प्रकाश के रूप में गायन किया गया है। हम देखते हैं जो भी हमारे और भी धर्म पिताएं हैं, उन्होंने हमें उस एक ईश्वर की याद के लिए दिशा दी। अगर हम जैनिज्म में देखते हैं, बुद्धिज्म में देखते हैं, तो महावीर स्वामी जी भी और बुद्ध धर्म के हमारे गौतम बुद्ध स्वामी जी भी हमेशा तपस्या में लीन दिखाते हैं। तो महावीर स्वामी जी किसको याद कर रहे हैं? महावीर स्वामी ने भी 12 वर्ष पहले जंगल में तपस्या की, तब जाकर उन्होंने अपने कर्म इंद्रियों को जीता, जिसलिए जैनिज्म में जय जिनेन्द्र कहते हैं। और शरीर रूपी वस्त्र जो है, शरीर भी आत्मा का वस्त्र है, तो इस शरीर रूपी कर्म इंद्रियों को जीतने का संकेत उन्होंने शरीर रूपी वस्त्र के अहम को जीता, उसकी कर्म इंद्रियों को जीता, इसलिए वो शरीर को जीतने के संकेत के रूप में वस्त्र का त्याग किया। वास्तव में वो त्याग था देह अभिमान का, देह भान का त्याग, तो वो संकेत था। इसलिए वहां भी आप देखिए तपस्या में लीन, उस एक की याद में। बुद्ध धर्म में भी आप देखिए मेडिटेशन का महत्व किया गया है, मेडिटेटिव पोस्चर में हमेशा बुद्ध को दिखाया गया है। हर कर्म करते, जैसे सिटिंग बुद्धा, ईटिंग बुद्धा, लाफिंग बुद्धा, हर कर्म करते हुए ईश्वर की याद में रहना। हम देखते हैं पारसी धर्म में भी अग्यारी है, फायर टेम्पल, वहां भी अग्नि को ही ईश्वर के स्वरूप के रूप में याद किया गया है। तो हम देखते हैं कि हर एक धर्म में परमात्मा का निराकार स्वरूप का गायन है, लेकिन एक ऐसा धर्म है जहां बहुत सारे साकार स्वरूप में मूर्तियों के रूप में गायन है। कौन सा धर्म है? हिंदू धर्म। वहां भी अनेक मूर्तियों के रूप में हम देखते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं के रूप में गायन किया गया है, लेकिन वहां भी एक निराकार स्वरूप जरूर है। कौन सा है निराकार स्वरूप? शिवलिंग का। तो हम देखते हैं वहां लिंग स्वरूप के रूप में शिव का गायन जो किया गया है, वो अनेक ज्योतिर्लिंगम का गायन है, और हर एक ज्योतिर्लिंगम का जो मंदिर का नाम है, वो नाम या तो नाथ है या ईश्वर है। सोमनाथ है, रामेश्वरम है, बाबुलनाथ है। तो हर एक नाम जो है कर्तव्य सहित है। अगर सोमनाथ के रूप में गायन करें तो परमात्मा जो है ज्ञान का सोम रस देने वाला सोमनाथ है। तो सोम रस अर्थात नेक्टर, अमृत समझते हैं। तो शास्त्रों में क्या गायन है कि जैसे कोई व्यक्ति का देहांत हो गया, कि उसकी मृत्यु हो गई, उसको अगर ये सोम रस पिलाया जाए तो क्या होगा? उसको जीवदान मिल जाता है। तो स्थूल रूप में मृत्यु नहीं है, लेकिन आज जीवन में व्यक्ति के अंदर में जो खुशी है, जो अंदर में सुख का अनुभव है, जो अंतर में एक सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ रिस्पेक्ट का अनुभव है, वो धीरे धीरे कम होते होते समाप्त होता जा रहा है। तो व्यक्ति का जीवन जरूर है, लेकिन वो व्यक्ति खुश नहीं है। वो व्यक्ति अंतर से अपने आप को बहुत हीन भावना से देखता है, बिल्कुल सेल्फ एस्टीम नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति का जीवन है, लेकिन वो जीवन कैसा है? मृत्यु के समान है, परेशानी स्ट्रेस हर पल है। तो ऐसे जीवन को भी नया जीवन देने वाला, जीवदान देने वाला, ज्ञान का सोम रस देकर हमारे जीवन के प्रति दृष्टिकोण को श्रेष्ठ बनाने वाला, हमारे इस जीवन को फिर से एक नई दिशा देने वाला, श्रेष्ठ सुंदर बनाने वाला, सुखदायी बनाने वाला, ज्ञान का सोम रस देने वाला सोमनाथ। हम देखते हैं रामेश्वरम, जहाँ देवताओं ने भी, राम रूपी देवता ने, अनेक देवताओं ने उसकी पूजा की। अमरनाथ, अमरनाथ क्यों कहा? तो आत्मा तो अमर है ही, अमर है ना, आत्मा के लिए कहा गया कि अजड़ अमर अविनाशी है। तो अमर आत्मा का ज्ञान देने वाला अमरनाथ। तो जैसे आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और धीरे धीरे जब हम ये अभ्यास करते जाते हैं कि आत्मिक स्मृति में रहकर हर कर्म करें, मन बुद्धि से आप विजुलाइज करें, सुबह से रात तक जो आपकी दिनचर्या है, अगर आप इस स्मृति में रहकर, आत्मिक स्मृति में रहकर कर्म कर रहे हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, ये नेचुरल अवेयरनेस के रूप में सारा दिन सुबह से रात तक इस स्मृति से अगर आप कर्म करें, तो क्या होगा? हमारे दैनिक कर्म कैसे हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, क्या कहेंगे? सुखदायी हो जाएंगे, श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो आज जैसे हमें अपना नाम है, अपना कार्य है, अपनी योग्यताएं हैं, अपना परिवार है, इसकी स्मृति है, बाह्य स्व की स्मृति से सारा दिन हम रहते हैं, ऐसे ही परमात्मा हमें अमर आत्मा का परिचय देकर इसकी स्मृति में स्थित रहकर कर्म करना सिखलाते हैं। तो जैसे आत्मिक स्मृति में रहते हैं, तो मृत्यु का जो भय है, जो अंतर में चिंता है, वो समाप्त होती जाती है। हम इसको समझ लेते हैं कि आत्मा ने अगर ये शरीर स्वीकार किया है, उसको हमने जन्म कहा, तो आत्मा को कभी ना कभी शरीर छोड़ना होगा, शरीर छोड़ना होगा। रिटर्न टिकट सबके पास है, वापस घर जाने की नहीं, लेकिन वो जीवन यात्रा की भी रिटर्न टिकट है ना सबके पास। तो मृत्यु अर्थात आत्मा का ये शरीर छोड़ना, तो जैसे इस ज्ञान से हम इसको देखते हैं, तो जो भय है मृत्यु का, वो धीरे धीरे समाप्त होता जाता है, औरों के मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। तो ऐसे अमर आत्मा का ज्ञान देकर हमें अमर बनाने वाला, मृत्यु के भय को जिताने वाला अमरनाथ। बबूलनाथ, तो बंबई में बबूलनाथ मंदिर है, बबूल वृक्ष आप जानते हैं, बहुत अच्छा वृक्ष है, इसमें बहुत फायदे हैं, दातून के रूप में भी यूज करते हैं, लेकिन इसमें कांटे बहुत हैं। तो हम सब आत्माएं इस समय हम देखें, हमारे अंदर कोई ना कोई ये कमजोरियां या मनोविकार जरूर हैं, थोड़ा थोड़ा गुस्सा है ना, हमारे अंदर भी है, थोड़ा थोड़ा है। तो वो क्रोध के वश या आवेश के वश या अहम भाव के वश जब हम कर्म करते हैं, तो एक दूसरे को दुख देते हैं, दुख देते हैं ना, स्वयं को भी देते हैं औरों को भी दुख देते हैं, ऐसा है। जिसको भी हम गुस्सा करते हैं, दुख तो मिलता है ना, और हम भी खुद परेशान होते हैं। तो इसलिए ये जो हमारे विकर्म है या विकार है, ये कांटों के समान है, दुख देने वाले। तो ऐसा दुख देने वाला स्वभाव परिवर्तन कर, कांटों को फूल बनाने वाला, हमारे स्वभाव को सुखदायी बनाने वाला, हमारे अंदर दैवी गुणों की धारणा कराने वाला, कांटों से फूल बनाने वाला बबूलनाथ। तो हम देखते हैं कि आत्मा और परमात्मा में बहुत समानता है। जैसे आजकल बच्चे क्या करते हैं, माता पिता और बच्चे क्या करते हैं, सेम ड्रेस पहनते हैं ना, कहते हैं ट्विनिंग करते हैं, अच्छा लगता है ना, एक ही प्रकार का ड्रेस पहनना, एक ही एक्टिविटी में साथ में डांस करना, साथ में कोई एक्टिविटी करना, अच्छा लगता है ना। तो ऐसे ही अगर हम देखें, तो आत्मा भी निराकार है, परमात्मा भी निराकार है। आत्मा भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, परमात्मा भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, ये परिचय परमात्मा आकर देते हैं। है ज्योतिर्बिंदु स्वरूप और गुणों का क्या है, बिंदु स्वरूप होते हुए गुणों का सिंधु स्वरूप है, अर्थात हर गुण का सागर है, स्रोत है। परमात्मा जो है हम आत्मा का पिता है, तो इसलिए जैसे माता पिता से हमें क्या मिलता है, बच्चे को माता पिता से क्या मिलता है, प्रॉपर्टी मिलती, प्रॉपर्टी मिलती है ना, आपका जो कुछ है वो किसका है, बच्चों का है ना। छोटे बच्चा भी अगर कंपाउंड में खेल रहा है, कोई उसको पूछे ये गाड़ी किसकी है, तो क्या कहता है, मेरी गाड़ी है। ये नहीं कहेगा मेरी डैडी की है, मम्मी की है, मेरी गाड़ी है। क्यों क्यों कहता है मेरी है, क्योंकि बालक सो मालिक। तो परमात्मा भी हमें कहता है कि तुम हर गुण और शक्ति के मालिक हो। परमात्मा के जो गुण और शक्तियां हैं वो मेरे हैं, हम उनके मालिक हैं। वो शांति का सागर है, तो मैं कैसा हूं, शांत स्वरूप हूं, मास्टर शांति का सागर हूं। परमात्मा पवित्रता का सागर है, तो उसकी संतान मैं कौन हूं, मैं भी शांत स्वरूप के साथ साथ पवित्र स्वरूप हूं, मास्टर पवित्रता का सागर हूं। तो परमात्मा हमें अपने जैसा बनाता है, अपने जैसा हर गुण और शक्तियों में मालिक बनाता है, ये उनकी सबसे सुंदर विशेषता है। तो हमें अपने जैसा संपूर्ण अधिकार अपने हर गुण और शक्तियों पर दे देता है। इसलिए जब हम उनको याद करते हैं, तो क्योंकि अब हम बालक बन गए हैं और उसके हर गुण और शक्तियों के मालिक हैं, तो अब से हमारा ईश्वर से कोई भी चीज के लिए मांगना समाप्त, समाप्त हो गया ना, समाप्त हो गया ना, मालिक है। अगर हम देखें आपका बच्चा है स्कूल से आया, आप पहले आ गए हैं और बच्चा थोड़ा लेट, उसका स्कूल छूटा, आज उसके एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, तो वो स्कूल से आया, आप शाम को बैठकर आप चाय नाश्ता कर रहे हैं, बच्चा आता है तो क्या करता है, वो साथ में बैठकर आपके साथ चाय नाश्ता करता है ना, वो दरवाजे पे खड़े होकर आपसे मांगेगा कि मम्मी प्लीज थोड़ा बिस्किट दे दो, मम्मी प्लीज थोड़ा सा सैंडविच दे दो, मांगेगा, मांगेगा, उसका अधिकार है ना, वो बैठ जाएगा आपके साथ और आपकी प्लेट से भी ले सकता है ना अधिकार। तो आपका सब कुछ उसका है, ऐसे परमात्मा का हर गुण और शक्ति, उस पर परमात्मा हमें अधिकार दे देते हैं कि वो तुम्हारा है। तो इसलिए अब जब हम उसको याद करेंगे, तो किस रूप से याद करेंगे, कि वो उन गुण और शक्तियों का सागर है और हम उस सागर के बच्चे उन गुण और शक्तियों के स्वरूप हैं, मालिक हैं, बालक सो मालिक हैं। तो उस समीपता से, उस प्यार से हम उनको बहुत दिल से याद करते हैं। परमात्मा ने आकर अपना परिचय दिया, तो परमात्मा है ही परम पिता, परमात्मा पिता है सर्वात्माओं का, इसलिए परमात्मा ने आकर अपना नाम शिव बताया है। अब शिव शब्द जो है संस्कृत का शब्द है, और संस्कृत हम जानते हैं कि सभी भाषाओं की जननी है ना, हर एक भाषा में संस्कृत के कोई ना कोई शब्द हैं, आप में से कई संस्कृत सिखाने वाले भी हैं, तो इसलिए हम देखते हैं कि संस्कृत में भी ये शिव शब्द के अर्थ हैं। क्या अर्थ हैं, आप तो सिखाने वाले ही हैं संस्कृत जी, क्या अर्थ हैं जी, कल्याणकारी, पहला अर्थ है कल्याणकारी, शिव अर्थात कल्याणकारी, दूसरा है बिंदु पॉइंट, तीसरा है बीज। तो हम देखते हैं कि इस एक शब्द में परमात्मा का स्वरूप भी आ जाता है, बिंदु स्वरूप, मेरा उनके साथ संबंध बीज है, तो मेरा कौन हो गया, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का चैतन्य बीज है, तो मेरा कौन हो गया, रचयिता पिता, माता पिता। और तीसरा कल्याणकारी, हम सर्व आत्माओं का कल्याण करने वाला, हमें पवित्र बनाने वाला, हमें शुद्ध बनाने वाला, हमें परिवर्तन करने वाला, हमें मनुष्य से देवता बनाने वाला। तो इसलिए ये एक ही शब्द में ये तीनों अर्थ हैं, इसलिए परमात्मा का नाम शिव है, तो यहाँ हम शिव बाबा कहते हैं। लेकिन कई बार आप कईयों से शब्द सुनेंगे जो आपके साथ वॉलंटियर्स हैं, गाइड्स हैं, सेवाधारियां हैं, तो उनसे बाबा शब्द सुनेंगे, सुनते हैं कई बार, ये कार्य बाबा करा रहे हैं, बाबा शब्द सुनते, तो बाबा अर्थात परमात्मा पिता। तो क्योंकि संबंध में समीपता शब्द से आती है, जैसे कोई आप अगर प्रिंसिपल भी हैं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं, लेकिन घर जाएंगे तो क्या है, आप HOD भी हैं लेकिन घर जाएंगे तो क्या है, डैडी है मम्मी है, नहीं। और डैडी मम्मी को भी हर एक बच्चा अपने शब्दों से बुलाता है, कोई मॉम कहेंगे, कोई मैम कहेंगे, कोई माँ कहेंगे, कोई अम्मा कहेंगे, नहीं, अलग अलग है ना, पॉप्स कहेंगे, पापा कहेंगे। तो हर एक का अपना शब्द, वो प्यार का शब्द है जिससे उस संबंध की समीपता वो अनुभव करते हैं। तो यहाँ भी हम क्या कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं या सिर्फ बाबा शब्द कहते हैं, तो उससे क्या है, परमात्मा से वो प्यार की और समीपता का अनुभव होता है। अब परमात्मा का परिचय जब हमें प्राप्त कर लिया कि वो है ही मुझ आत्मा का पिता, निराकार पिता, तो हमने आज तक क्या किया है कि ईश्वर को याद जरूर किया है, लेकिन हमेशा क्या, किस रूप से याद किया है, कोई ना कोई साकार स्वरूप में याद किया है। अब जैसे हमने ईश्वर को साकार स्वरूप में याद किया है तो थोड़ा उसमें भिन्नता हो गई है। जैसे अगर हम देखें कि कोई भी धर्म में किसी का जन्म हुआ, क्रिश्चियन धर्म में बच्चे का जन्म हुआ, तो वो आत्मा ने गर्भ में प्रवेश किया और जैसे ही उस आत्मा जन्म हो जाता है बच्चे का, उसको पालना मिलती है, तो उसको सिखाया जाता है कि अब ये परिवार में क्रिश्चियन धर्म की पालना करने की जा रही है। तो उसे जब ईश्वर को याद करना है तो किस स्वरूप में याद करेंगे, क्योंकि वो स्वयं को भी हम साकार समझते हैं, शरीर समझते हैं, और हमें ईश्वर को भी साकार स्वरूप में याद करना है, तो वो क्रिश्चियन धर्म में किस रूप में याद करेंगे, क्राइस्ट के रूप में। हमारा जन्म हुआ उस परिवार में जहाँ सिख धर्म की पालना हो रही है, तो अगर हमें साकार रूप में ईश्वर को याद करना है तो किस रूप में याद करेंगे, गुरु नानक जी के रूप में याद करेंगे, जो और धर्म गुरु हो गए हैं उनके रूप में याद करेंगे। हम उस परिवार में हमने जन्म लिया जहाँ बुद्धिज्म धर्म की पालना हो रही है, बौद्ध धर्म की पालना हो रही है, तो किस रूप में याद करेंगे, साकार रूप में ईश्वर को, बुद्ध के रूप में। हमने स्वयं को भी साकार समझा इसलिए ईश्वर को भी साकार रूप में याद किया, लेकिन जैसे हमने देखा कि हर एक धर्म पिता ने हमें उस निराकार के तरफ इशारा किया, तो परमात्मा ने आकर आत्मा का भी परिचय दिया कि तुम आत्मा भी निराकार हो। तो जैसा बच्चा वैसे ही माता पिता का स्वरूप होता है, हम शरीरधारी हैं तो शरीर के माता पिता का स्वरूप कैसा होगा, जानवर का होगा या मनुष्य का ही होगा, मनुष्य का ही होगा। कोई हाथी है तो उसका पिता घोड़ा होगा या हाथी होगा, हाथी होगा। तो शारीरिक रूप में, दैहिक रूप में भी स्वरूप समान होगा। इसी रूप से अगर हम आत्मा है तो आत्मा का पिता कैसे होगा, वो भी निराकार परम पिता परमात्मा है, स्वरूप में अंतर नहीं है। तो इसलिए हम देखते हैं इसी निराकार पिता को याद करते हुए हर एक धर्म पिता ने हमें उस एक पिता के तरफ इशारा किया। तो यहाँ जब हम राज्यों के द्वारा परमात्मा को याद करते हैं तो अपने आप को भी निराकार स्वरूप में देखते हैं, अपने आप को भी हम आत्मिक स्वरूप में देखते हैं और उस पिता को भी निराकार रूप में याद करते हैं। साइंस कहता है कि जब दो ऊर्जाओं का मिलन होता है, व्हेन टू एनर्जीज मीट, तो क्या होता है, क्या होता है, आप सिखाते हैं ना फिजिक्स में, दो एनर्जीज मीट होती है तो क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी कहाँ से है, हायर से लोअर के तरफ। तो ऐसे ही मन बुद्धि से जैसे हम उस परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं तो क्या हो जाता है, वहां से ऊर्जा का संचार होता है, वो शांति का सागर है। तो हम उसको शांति के सागर के रूप में जब मन बुद्धि से याद करते हैं तो शांति की वाइब्रेशंस मुझ आत्मा में समाते जाते हैं, वो शांति की ऊर्जा जो है आत्मा में समाती जाती है। और जैसे जैसे हर एक गुण और शक्ति की ऊर्जा आत्मा के अंदर जमा होती जाती है, अक्यूमुलेट होती जाती है, तो फिर दैनिक कारोबार में हम उस ऊर्जा को प्रयोग कर सकते हैं। अब आज तक हमने ईश्वर को याद किया लेकिन क्योंकि हमने परिचय सहित याद नहीं किया, उस मूल रूप में याद नहीं किया, तो हमने क्या है, भावना से याद किया। तो हमें उस वातावरण में, जिस भी आध्यात्मिक स्तर पर हम बैठकर उसको याद करते हैं, उस वातावरण में हमें परमात्मा के प्यार का, शांति का अनुभव हुआ, लेकिन जब हम कारोबार में आए, जब हम अपने दैनिक कारोबार में, दिनचर्या में आते हैं, चाहे स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वहाँ कई जिम्मेवारियों में थोड़ा कश्मकश हो रही है, वहाँ उस शांति का अनुभव नहीं कर पाते हैं। वहाँ उस शांति की शक्ति को यूज करते हुए शांत या सहनशीलता धारण नहीं कर पाते हैं। तो मेडिटेशन से हम परमात्मा से कनेक्ट करके उन सारे गुण और शक्तियों को आत्मा के अंदर जमा करते जाते हैं, क्यूमुलेट करते हैं। उस राज्यों की विधि जो है वो आगे आप सेशन में भी देखेंगे। अब कुछ समय के लिए हम उस परमात्मा को बहुत प्यार से याद करेंगे। एक छोटी सी कहानी इस मेडिटेशन के पहले हम सुनना चाहेंगे कि परमात्मा को याद करना है तो हम सिर्फ बुद्धि से नहीं लेकिन दिल से याद करते हैं, क्योंकि एक ऐसा संबंध है जहाँ उस दिल के स्नेह की समीपता से वो कनेक्शन सहज हो जाता है। तो मैं ये कहानी जो है शायद आपने सुनी भी होगी, लेकिन मुझे ये बहुत प्रिय है इसलिए मैं हर बार सुनाती हूँ। तो एक छोटे बच्चे की कहानी है, और ये छोटा बच्चा जो है वो काफ़ी नटखट है। उसके पेरेंट्स जो है ये क्रिश्चियन धर्म की पालना हो रही है उनके परिवार में, तो पेरेंट्स जो है वो हर संडे चर्च में जाते हैं। तो बच्चा हमेशा इंसिस्ट करता है कि मुझे भी आपके साथ चर्च में जाना है। माता पिता जो है कोशिश करते हैं कि बच्चे को ना ले जाएं, क्योंकि वहाँ चर्च में तो आवाज़ होता है, बच्चों को अलाउड नहीं किया जाता है। अब बच्चा जो है एक दिन उठ जाता है जल्दी और वो इंसिस्ट करता है कि मुझे चर्च में साथ में चलना है। बच्चे को ले जाते हैं। अब वहाँ बहुत बड़ा गार्डन भी है वहाँ चर्च के आसपास, तो वहाँ बच्चे को, और भी बच्चे हैं खेल रहे हैं, उन बच्चे को भी खेलने के लिए वहाँ छोड़ देते हैं और माता पिता चर्च में चले जाते हैं। उनका प्रेयर पूरा हो जाता है। उसके बाद उस दिन कोई आपस में कम्युनिटी सर्विस के लिए कुछ मीटिंग कर रहे हैं, तो पीछे दूसरे कमरे में, दूसरे हॉल में सभी मीटिंग कर रहे होते हैं। थोड़े समय के बाद बच्चा देखता है कि अभी माता पिता तो अभी तक आए नहीं हैं, तो वो उनको ढूंढने निकलता है। तो वो बहुत बड़ा वो जो हॉल है, प्रेयर हॉल, वहाँ चला जाता है चर्च में। उसको बहुत अच्छा लगता है, इतना बड़ा हॉल, आगे चला जाता है और अंत में एक डोर है, वहाँ दरवाजा है, उसमें लिखा है नो परमिशन। बच्चे के लिए तो हमेशा परमिशन होता है, तो बच्चा वो दरवाजा खोल के अंदर चला जाता है। तो अंदर में जो हेड प्रीस्ट है, जो हेड फादर है, वो बैठे हुए हैं और वो प्रार्थना में है और वो शांति से बैठकर आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं। तो बच्चा जो है वो छोटा है, नटखट है, तो उसने क्या किया, जैसे फादर कर रहा है वैसे उसने भी नकल की, तो वो भी आंखें बंद करके ऐसे करके बैठ जाता है और बार बार फादर को देखता है आंखें खोल के। तो उसको उसमें मजा आ रहा है। अब थोड़े समय के बाद फादर को ध्यान में आता है कि यहाँ कोई और है, तो जैसे ही वो हेड फादर प्रीस्ट है, बहुत बड़े हैं, वो जैसे बच्चे को देखते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चे को कहते हैं कि ये प्रेयर है, इसमें मजाक नहीं किया जाता है। तो बच्चा कहता है मैं भी प्रेयर कर रहा हूँ। तो वो फादर कहता है तुम कौन सी प्रेयर कर रहे हो? तो बच्चा कहता है आप कौन सी प्रेयर कर रहे हैं? अब फादर को थोड़ा अंदर से गुस्सा भी आ रहा है, तो वो बाइबल खोलकर जो सबसे डिफिकल्ट प्रेयर है, उसमें बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, वो सुना देता है। अब वो बच्चे को कहता है तुम कौन सी प्रेयर कर रहे थे? तो बच्चा भी बहुत कॉन्फिडेंटली ए बी सी डी जेड तक सुना देता है। तो फिर वो बच्चे को कहता है कि ये ऐसे बच्चा बिल्कुल ये ठीक नहीं है, ये प्रेयर में ऐसा मजाक बिल्कुल नहीं किया जाता है, भगवान नाराज हो जाते हैं। तो बच्चा कहता है कि आपके जो भी ये प्रेयर्स हैं बाइबल में, वो सब में शब्द कहाँ से लिए गए? ए टू जेड। मैंने ईश्वर को कहा तुम्हें जैसा जोड़ना है जोड़ दो। अर्थात हम देखते हैं कि ये सिर्फ शब्द, और किस रूप से, कौन से शब्दों का हमने प्रयोग किया, किस स्वरूप से हमने उस प्रार्थना की, स्थूल रूप में हमने क्या किया, उसका इतना महत्व नहीं है जितना दिल से हमने कितना उसको प्यार से याद किया है। तो चलिए हम कुछ क्षणों के लिए उस परमात्मा पिता को याद करते हैं। जैसे कल हमने देखा, हम मन बुद्धि से उनके साथ कनेक्ट होते हैं, तो मन को हम विचार देते जाएंगे, मन से हम उनसे बातचीत करेंगे और बुद्धि रूपी चक्षु जो है, नेत्र है, उससे विजुलाइज करेंगे। मन मुख है जिससे ईश्वर से बात करेंगे और बुद्धि नेत्र का काम करेगी जिससे हम देखेंगे। कुछ समय के लिए मन और बुद्धि को बाह्य जगत से समेट लेते हैं, अपने अंतर की जगत की ओर, अंतर चक्षु से, मन की आंखों से, मस्तक के मध्य में अपने सुंदर स्वरूप को देखते हैं। मैं आत्मा एक सुंदर सितारे के रूप में त्रिकुटी के मध्य विराजमान हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। अंतर से शांति को महसूस करें। शांति मेरा स्वभाव है। कुछ समय के लिए मन और बुद्धि को उस शांति के सागर के पास ले जाएं, जैसे हमने देखा कि परमात्मा का रहने का स्थान इस आवास की दुनिया से परे है। मन और बुद्धि के द्वारा इस सुंदर यात्रा आरंभ करते हैं। मन की आंखों से देखें कि मैं सुंदर आत्मा इस आवास की दुनिया से परे उस शांति की दुनिया में पहुंच जाते हैं। ये सुंदर आत्मा रूपी सितारा उस प्रकाश की दुनिया में पहुंच जाता है। सोनेरी लाल प्रकाश का ये महतत्व शांति धाम, जहां चारों तरफ शांति ही शांति है। मन की आंखों से इस परम धाम को देखें। यहां मैं आत्मा रूपी सितारा शांति की आभा में स्थित हूं। यहां परम पिता परमात्मा विराजमान है, शांति का सागर, प्रेम का सागर। मन की आंखों से उस परम ज्योति स्वरूप को देख रहे हैं। परमात्मा मुझ आत्मा के समान ही एक सुंदर दिव्य सितारा है, जिसका आभा, जिसका प्रभा मंडल चारों तरफ फैल रहा है। वो डिवाइन लाइट, सुप्रीम लाइट है, वो शांति का सागर, जिससे असीम शांति का प्रकाश मुझ आत्मा में समा रहा है। मन की आंखों से देखें, परमात्मा से ये शांति की लाइट आप आत्मा के अंदर प्रवेश हो रही है। मन में, हृदय में ये शांति का प्रकाश समा रहा है। हमारा मन शांति की शक्ति से भरपूर हो रहा है। वो प्यार का सागर, जिससे प्यार की किरणें हमारे अंतर मन को सुकून दे रही है, सुख दे रही है। परमात्मा सर्वशक्तिवान, जिससे दिव्य शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। परमात्मा का सानिध्य कितना सुखदाई है, शक्तिशाली है। अपने अंतर मन में परमात्मा का ये प्यार, शुद्ध प्रेम, परमात्मा की असीम शांति को समाते हुए अपने आप को ईश्वर के वरदानों से भरपूर महसूस करते हुए, ब्लेस्ड फील करते हुए, हम फिर से अपने आप को यहां इस हॉल में देख रहे हैं। अपने आप को फिर से यहां अपने कर्म क्षेत्र पर उपस्थित करते हैं। ओम शांति।